Nah, ini. बिसलाल जी कियो कि इन्हें जरूर पढ़ जो जरूर सुनाना और आदि सुनाना ठीक है सर कि मैं आऊं रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भरत जी महाराज अयोध्या वासियों को साथ में लिए हुए, गुरुजनों को, माताओं को साथ में लिए हुए, अब निषाद राज को अगवा बनाए बनाए प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचे तो उस समय में भरत जी महाराज, देखो दुनिया तो बोलती है सीताराम सीताराम, और भरत जी महाराज बोलते हैं कि राम सिये राम सिये राम सिये राम सिये। ये उल्टा क्यों बोले कि भरत जी को राम जी वनवास में है ना, इस कारण राम जी की ज्यादा याद आ रही है। कहत राम सिये उमग उमग अनुराग, राम सिये कहने में ज्यादा अनुराग पैदा हो रहा है। अब भरत जी पैदल चल रहे थे, कल आपने सुना तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, झलका माने फफोला है, फफोला झलकत माने दिखते हैं, फफोला कैसे दिखते हैं उनके पैरों में कि पंकज कोस ओसगन कैसे, जैसे माने जैसे कमल की पंखुड़ियां हैं उनके ऊपर ओस की बूंदे रहती हैं, बूंदे ऐसे उनके कोमल कोमल चरणों में ये फफोले हो गए, ऐसे फफोले। सब लोग बड़े दुखी हैं, भरत जी को ऐसा पैदल देखा। तब भरत जी ने देखा कि इस प्रयागराज में सब लोगों ने स्नान कर लिया, अब मैं स्नान करूं, तो त्रिवेणी के वहां गए और वहां उन्होंने एक तो स्वच्छ जल देखा साफ और एक थोड़ा श्याम वर्ण। देखो प्रयागराज में तीन नदियां बहती हैं, तो सरस्वती तो इतनी नीचे बहती है कुछ पता नहीं है। सरस्वती नदी के लिए तो आजकल बड़ी शोध हो रही है कि सरस्वती नदी कहाँ है, कोई कहते हैं हमारे इधर है, कोई कहते कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। प्रयागराज में कहते हैं कि वो सरस्वती नदी बहुत नीचे उन दोनों के साथ चलती है, तो क्या पता वहां साथ चलती है कि जहां त्रिवेणी वहां पर पानी घूमता है, वहां जैसे गंगा जी इधर से आई, यमुना जी इधर से आई, यहां आके मिली और यहां आकर के यदि वो पानी घूमता तो यहां सरस्वती का पानी है। तो सब स्नान कर लिए तो फिर भरत जी महाराज त्रिवेणी पर आए। सीता सीत नीर नहाने, बात ये चल रही थी गंगा जी का पानी तो एकदम साफ, यमुना जी का पानी वो थोड़ा सा श्याम वर्ण वाला, दोनों का जो मिलाव है, मिलन हो रहा है, वहां जाकर के भरत जी महाराज पहले ब्राह्मणों को दान दिए और फिर जो है हाथ जोड़ करके वहां खड़े हो गए और कहने लगे हे तीर्थराज, आप तो सब लोगों की कामना को पूरी करने वाले हो, वेदों में आपका यश बताया गया है, तीर्थराज प्रयागराज में कोई अपनी कामना करता है तो उसकी सब सिद्धियां होती हैं। मैं तो कामना नहीं कर रहा हूं, मैं तो आज आपसे भीख मांग रहा हूं, मांगू भीख त्यागी निज धर्मू, अपना धर्म छोड़ करके भीख मांग रहा हूं। मैं क्षत्रिय हूं, मैं भीख क्यों मांगू? क्षत्रिय का धर्म होता है किसी को भीख देने का। मैं तो महाराज भीख मांगने लग गया। मांगू भीख त्याग निज धर्मू, अपने धर्म का त्याग करके मैं तो भीख मांगने लग गया। आरत काहन करई कुकर्मू, परंतु ये आर्त व्यक्ति कौन सा ऐसा कुकर्म है जो न कर सके? हम तो आर्त व्यक्ति है महाराज। और जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो दानी पुरुष होते हैं, वो सदा ही याचक की वाणी को सफल करते हैं, तभी उनमें श्रेष्ठता आती है। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूं। क्या मांगते हो भरत जी महाराज? कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निरबान, जन्म जन्म रति राम पदा यह बरदानन आन। महाराज कोई रुपया पैसा ऐश्वर्य भोग सामग्री आदि अर्थ नहीं मांगता। कोई धर्म की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। धर्मात्मा मेरे पिताजी, धर्मात्मा मेरे बड़े भाई, धर्मात्मा के वंश में मैंने जन्म लिया। धर्म की भी कोई कमी नहीं है, भोग पदार्थों की कमी नहीं है, अर्थ की कमी नहीं है, और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता बाबा, मैं मुक्ति नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो भाई? चार प्रकार का ही तो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए मानव शरीर मिला। तुम चारों ही चीज नहीं चाहते तो क्या चाहते हो? कि मैं तो मुक्ति नहीं चाहता। मुक्ति चाहेंगे तो भाई अगला जन्म नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ मेरा तो अलग जन्म हो और बार बार जन्म हो, जन्म जन्म बार बार मेरा जन्म हो, लेकिन हर जन्म में राम जी के चरणों में मेरी रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। ये वरदान, और कुछ वरदान नहीं मांगता। देखो अब भरत जी महाराज की अभिलाषा देखिए आप कितनी बढ़िया। आपको ऐसा प्रेम यदि यूं कहें कि गोपियों में भी नहीं था, तो प्रेम के तो अब कई कई चीजें आती हैं। अब किसके प्रेम को कम और किसको ज्यादा बताएं, लेकिन गोपियों में भी ऐसा प्रेम देखने में नहीं आया जैसा राम जी के आया है, नहीं भरत जी के आया है। क्या कह रहे हैं भरत जी महाराज? कि हे प्रयागराज, जानू राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये खास बात है। देखो ऐसा प्रेम हो नहीं सकता है, और भरत जी महाराज ने मांगा है। देखो असंभव, मुझे राम जी कुटिल माने। मैं कहूं महाराज मेरी कोई गलती नहीं? नहीं, सब तेरा षड्यंत्र है। तेरी माँ तेरे राज्य के लिए वरदान मांग रही है और तू कहता है मुझे पता ही नहीं है। कभी संभव है क्या ऐसा? राम जी मेरे पर दोषारोपण करते ही रहे। वो मैं एक बार कहूं, दो बार कहूं, 100 बार कहूं, तो भी वो कहे कि नहीं मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम ऐसे ही हो। जानो राम कुटिल कर मोही, फिर भी मेरा प्रेम रहना चाहिए। सज्जनों ऐसा प्रेम रह ही नहीं सकता है। कोई आदमी कहे कि मेरा कसूर नहीं है, तो भी कहे नहीं तेरा ही कसूर है, हम जानते तेरा कसूर है। ऐसे कहते अच्छा बाबा मेरा कसूर, कर लो जो कुछ करना है। आखिर मन फट ही जाता है। पर भरत जी कहते हैं कि जानो राम कुटिल कर मोही, राम जी मुझे कुटिल मान ले, और लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सब लोग मुझे कहने लगे ये गुरु द्रोही है, ये स्वामी का द्रोह करने वाला है, बड़े भाई के साथ इसने द्रोह किया, उसने उनको वन में भिजवा दिया, अपनी माँ को बहकवा दिया, दो वरदान के पीछे बड़ी चालाकी से स्वयं तो ननिहाल चला गया, पीछे सड़ा षड्यंत्र किया। एक एक आदमी यही बात कहता रहे, ऐसी स्थिति में भी हे प्रयागराज मेरा सीताराम के चरणों में प्रेम अनुदिन बढ़ता रहे, प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ता रहे, ये असंभव मैं वरदान मांग रहा हूं, पर अनुग्रह तो रहे, तेरी कृपा होनी चाहिए। ऐसा प्रेम भाई चाहते हैं भरत जी, बड़ा मुश्किल प्रेम है। जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरणति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। क्या भगवान में भक्ति प्रेम है भरत जी का। गोपियों को भगवान ने कहा चली जाओ तुम। रजन्येशा घोर रूपा, घोर प्राणी निषेविता, घोर सत्व निषेविता। तो गोपियां रोने लग गई, हमको वापिस भेजते हो, हम तो तुम्हारे लिए कितना त्याग करके आई। लेकिन भरत जी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारा तो वही जानू राम कुटिल कर्म हुई, मैं सफाई देता फिरूं और वो मुझे कुटिल से कुटिल कुटिल से कुटिल बताते रहे तब भी मेरा मन प्रेम में कमी न लाए। बस फिर उदाहरण देते हैं, देखो जलदु जन्म भरी सुरति मिसारो, जाहत जल पविपाहन डारो, चाहत कुरत निरटे घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। सब मेरे चातक का उदाहरण दिया। चातक होता है वो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद बरसती है उसी को ही पीता है। वो चातक के सामने कई यू लाकर के कटोरा रखो, पानी रखो, चांदी का कटोरा कुछ भी रखो, यू प्यासा होगा यू जाएगा नहीं लेगा, बंद कर लेगा चूंच। और बादल बरसेगा तभी वो चूंच बंद करेगा, प्यासा होगा तो भी। लेकिन स्वाति नक्षत्र के अंदर चूंच खोल देगा वो, तो वो पानी पीता और नहीं करता। भरत जी महाराज कहते हैं कि चातक की जन्म भर तक बादल सुधी न लेवे, जलदु जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जन्म भर तक चातक की ओर वो बादल देखे ही नहीं, उसकी सुरति बिसार देवे। और जाचत जल, वो कहता है हे बादल बरसो तो सही, बरसो तो सही, वो बरसे नहीं। और पवि पाहन डारऊ, और उसके ऊपर वज्रपात करे, पत्थर फेंके उस चातक के ऊपर, तो भी चातक रटनी घटे घटी जाई। चातक यदि अपनी रट को घटा देता है कि फिर कहता है छोड़ो मैं मर जाएंगे लेकिन अब बदल की तरफ नहीं देखेंगे, ऐसा यदि मन में झुंझलाट ले आता है तो चातक की घटती है भाई, बदल की क्या घटेगी। चातक की रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, उसका तो और प्रेम बढ़ना। अरे बादल मेहरबान बनो, मेहरबान बनो, दया करो भाई, बरसाओ। और वो वज्रपात करे, पत्थर डारे, तो भी के नहीं नहीं पानी बरसाओ, पानी बरसाओ। कनकई बान चढ़ई जिमीदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। जिस प्रकार से सोना है उसको जितना तपाते हैं उसमें उसमें आभा निकलती है। कनकई बान, बान माने आभा, कांति, कांति निकलती रहती है। ऐसे ही प्रियतम के चरणों में मेरा नेम है, प्रेम है, ये इसी प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। भरत जी ने जब ऐसी बात कही तो उस समय त्रिवेणी ने आकाशवाणी से कहा, हे भरत तुम कितने श्रेष्ठ हो, राम जी के चरणों में इतना अगाध प्रेम तुम्हारा, इतना गहरा प्रेम, सब प्रकार से तुम श्रेष्ठ हो भरत, प्रेम करने में तुम श्रेष्ठ हो, राम के तुम बड़े प्रियतम हो, तुम व्यर्थ में ही अपने मन में ग्लानि ला रहे हो, तुम सोच रहे हो कि राम मुझे कुटिल समझेंगे। अरे राम जी क्यों समझेंगे, राम जी में प्रेम की कमी है क्या? राम जी में प्रेम की कमी हो तो तुमको कुटिल समझे, राम जी के मन में प्रेम की कमी तो है नहीं। बाद्य गलहानी करो मन माही, तुम सम राम ही प्रिय को नाही। तुम व्यर्थ में ही ग्लानी कर रहे हो भरत, तुम्हारे समान तो राम के हृदय में जाकर हमने टटोल के देखा कोई प्रिय नहीं है, तुम्हारे समान राम जी के हृदय में कोई प्रिय नहीं है। तन पुल के हरषिप सुनी, बेन वचन अनुकूल, भरत धान्य कही धन्य सुर, हरषित बरसई फूल। तन पुलकित हो गया, मन में बड़ा हर्ष हुआ, भरजरी राम जी के हृदय में मेरे लिए जगह है। प्रयागराज तो कभी झूठ नहीं बोलते, प्रयागराज तो बहुत सत्य बोलने वाले हैं, ये तो साक्षात तीर्थराज है, ये स्वयं चेतन है, कल्याण करने वाले हैं, ये झूठ क्यों बोलेंगे? तो आपने कहा राम जी के हृदय में मेरी जगह है। ओहो, इधर देवता लोग कहने लगे भरत तुम धन्य हो, भरत तुम धन्य हो, ऐसे भरत जी को धन्य धन्य कहने लगे और भरत जी के ऊपर खूब फूलों की बरसात होने लगी। तीर्थराज में रहने वाले जितने लोग थे वो सब लोग वहां आ गए, चाहे वो वानप्रस्थ थे, चाहे वो ब्रह्मचारी थे, चाहे वो सन्यासी थे, चाहे वो गृहस्थी थे, सब आ गए। आकर के भरत जी को कहे अरे भरत जी, अरे भरत जी, भरत जी का स्नेह, भरत जी का शील, भरत जी की पवित्रता, भरत जी की सत्यता, उसके विषय में सब लोग बातें कर रहे, देखो भरत जी को देखो, राम जी के पास मनाने जा रहे हैं, उनको राज्य देने जा रहे हैं। ओहो, ऐसा तो कोई हमने आज तक सुना ही नहीं भाई। ऐसे भरत जी महाराज अपने साथियों को लेते लेते भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तो दंड प्रणाम करत मुनि देखे, भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और भरद्वाज जी महाराज उनको अपने आसन पर बैठा, आओ भरत बैठो बेटा बैठो। तो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, चहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। भरद्वाज जी महाराज के वहां पर बैठते हैं तो भरत जी को ऐसा लगता है कि किसी संकोच के घर में जाकर बैठ जाऊं, कोई संकोच का घर हो तो उसमें दौड़ करके बैठ जाऊं, इतने संकुचित हो रहे भरत जी। उनके मन में यह है कि अब भरद्वाज जी मुझसे पूछेंगे क्यों तुमने राज्य हथिया लिया ना, राम को वन में भेज दिया ना, अब काय को फिरते हो तुम, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो कहेंगे कि भरत तुम यहां क्यों आए, तो क्या जवाब दूंगा। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि जाने क्या पूछेंगे, मुझे बड़ा सोच है क्या करें। ऐसे वो संकुचित हो रहे हैं तो भरद्वाज ऋषि समझ गए। भरद्वाज ऋषि कहने लगे सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, हे भरत तुम संकोच मत करो, हमने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो कुछ अयोध्या की घटना हुई एक एक घटना का हमें पूर्ण ज्ञान है, हमने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर एक ही बात है कि जो विधाता जो कुछ कर देता है उस पर किसी का बस नहीं चलता। भरत मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, तुम सोच रहे हो कि अब क्या होगा, मेरी माँ को क्या कहेंगे, तुम गलान जी जानी करो, तुम्हारी माता का जो कुछ भी कर्तव्य हुआ उसको लेकर तुम्हारे मन में कोई ग्लानी नहीं होनी चाहिए, केके का कोई दोष नहीं है। आज पहली बार बोले हैं, देखो इतने लोगों के बीच में भरद्वाज ऋषि अयोध्या से चले और यहां तक आए तो भरद्वाज ऋषि इतने खुले बोले कि तात केक यही दोष नहीं, गई गिरा मति धूत, केके का कोई दोष नहीं है। क्यों, सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई हो, हमको सब पता है, पीछे का भी पता है और आगे जो होगा उसका भी पता है, केकी का कोई दोष नहीं है। वो तो गई गिरा, वो तो सरस्वती के कोई चक्कर में ही आ गई, गई गिरा मति धूती। अब देखे आपने पहले रामायण सुनी है, माने पीछे का प्रसंग सुना है, उसमें कहा सरस्वती तो वहां आई थी, उस सरस्वती ने तो मंथरा की बुद्धि फेरी थी, केकी की तो बुद्धि नहीं फेरी थी, कहीं प्रसंग आया नहीं पीछे। ये कहते हैं कि केके ही की बुद्धि सरस्वती ने फेर दी, तो ये उल्टी पुल्टी बात भाई, ये रामायण में कैसे आती है, बिल्कुल सही आती है। केके इनको मंथरा ने यही सलाह दी कि आप उनको तो जो है वनवास, भरत जी को राजगद्दी दे दो, राम को वनवास दे दो, वनवास की अवधि नहीं बताई थी, अवधि नहीं बताई, एक दिन भी वनवास भेज सकते हो, एक बरस भी भेज सकते हो, पूरा जन्म भर भेज सकते हो, अवधि मंथरा ने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई कि अवधि को ग्रहण कर ले, वे इतनी मंथरा में ताकत नहीं थी, 14 वो गिन करके नहीं बता सकती, देवताओं की बात थी भाई, देवताओं की सोची हुई बात ये मंथरा कैसे बोल सकती है? देवताओं की बात को भी कोई बहुत बड़ा हृदय चाहिए उसको बोलने वाला, तो मंथरा का तो ऐसा हृदय था नहीं। तो मंथरा का संग करते 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 जब राम जी का स्नेह केके के मन में कुछ कम हुआ, तब सरस्वती केके के अंदर घुसी और कहा कि 14 वर्ष का वनवास मांगा। तात केक यही दोष नहीं गई गिरा मति दूत। देखो भरत, यह कोई भी कहेगा तो ये बात किसी के उतरेगी नहीं। ये बात लोक वेद बुद्ध सम्मत दो, 14 वर्ष का वनवास और ये इनका तुम्हारा जो राज्य, ये जो कुछ बात हुई है इस बात को भला तो कोई कहेगा ही नहीं। लेकिन क्या बताएं, तुम्हारा जो निर्मल यश है वो यश लोक और वेद में ऐसा छाएगा, ऐसा छा रहा है और ऐसा छाएगा कि हम कह नहीं सकते हैं। लोक और वेद में सब जगह ये बात लिखी है कि राज्य कौन लेगा, कि जो पिता जिसको राज्य दे सो राज्य लेगा, जय पितु दे राज सो ले। और तुम्हारे पिता बड़े सत्यव्रती थे, एक गलती कर दी तुम्हारे पिता ने। क्या? तुम्हारे पिता तुमको ननिहाल से बुलाते, राव सत्यव्रत तुम्हें ही बुलाई, तुमको बुलाते और बुला करके देत राज सब प्रजा के बीच में कहते, देखो भाई मेरी इच्छा भरत को राजगद्दी देने की है, तो वो तुमको राज देते और उससे उनको बड़ा सुख मिलता, खूब धर्म मिलता, खूब बड़ाई मिलती। कोई नहीं कहता कि केके के चक्कर में आकर के किया है। राम गवन वन अनर्थ मूला, तुमको राज्य दे देते। राम जी के जहां तक वन गमन की बात है, ये सब लोगों के मन में शूल पैदा करने वाली बात हुई, अनर्थ का कारण तो यही हुआ। और केके को भी कौन सा इसमें बड़ा भारी लाभ मिल गया भाई? करी कुचाली अंत पछितानी, ये भी अंत में पश्चाताप भी कर रही है। ये सब बातें केके के और दशरथ जी के बीच की बात है। लेकिन सुनो, देखो भरत, तहूं तुम्हार अल्प अपराध, तुम्हारा कोई थोड़ा सा भी अपराध बताएगा वो तो भाई क्या बताएं, महान अधम है, अज्ञानी है, असाधु है, वो किसी काम का नहीं है। तुम यदि राज्य करते तो तुम्हें कोई दोष नहीं देता। और राम जी को पता चलता कि भरत राजगद्दी संभाल चुका है तो उनको बड़ा संतोष होता। परंतु तुम तो राज्य को भी छोड़ दिए, पिता की आज्ञा को भी छोड़ दिए, अब जंगल में तुम राम जी की तरफ आ रहे हो, ये तुमने काम कैसा किया बताएं? तो भरत जी को, और महाराज कैसा किया मैंने कि अब अति की ने उ भरत भल तुम ही उचित मत ए सकल सुमंगल मूल जग राम चरण सने रघुवर चरण सने। देखो ये राज्य वगैरह की बातें तो जिंदगी में होती रहती है, वो सबके साथ होती है। कोई राज्य प्रभोगता है तो कोई राज्य से निकलता है तो कोई जंगल में जाता है, तो होता ही रहता है। तुमने जो अब काम किया ये अति भला किया, अति भल, वो तुमने भला किया। तुम यदि राजगद्दी ले लेते तो वो भला ही काम था, कोई पाप नहीं था। पर अब अति कीने भरत भल, अति का अन्वय भल के साथ है। ये तुमने अब बहुत ज्यादा भला किया। क्या? कि तुमने जीवन का खास उद्देश्य पकड़ लिया कि राज्य रहे जाए, पिता मरे जिए, कुछ भी हो, हमें तो राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। ये जो तुमने बात सुनी, ये बात समझी ना, ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा भूरी भाग को तुम्हें समाना, तुम्हारा धन तुम्हारा जीवन प्राण तो राम जी के चरणों में स्नेह करना ही है। तो तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि तुम दशरथ जी के तो बेटा हो, राम जी के भाई हो, दो तुम्हारे अंदर विशेषता है, इसलिए तुमने जो ये काम किया कोई आश्चर्य नहीं है। और कोई करता तो आश्चर्य होता कि उसके दिमाग में बात ही कैसे पैदा हुई। पर तुम राम जी के भाई हो, दशरथ जी के बेटा हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो भरत, तुम्हारे समान राम का प्रेम पात्र इस समय संसार में कोई नहीं है। मुझे पता है मेरे यहां रात भर राम जी रहे तो लक्ष्मण राम और सीता आपस में बातें कर रहे थे तो केवल तुम्हारी चर्चा हो रही थी, तुम्हारी चर्चा। थोड़ी थोड़ी देर में राम जी तो रो रहे थे कि भरत मेरे ये वन गमन सुनेगा तो भरत को कितना दुख होगा। पिताजी के दुख की परवाह नहीं है, माँ के दुख की परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो मुझसे बड़े हैं, मेरे से तो छोटा भरत है। भरत को क्या कितना कष्ट होगा, भरत को मैं भरत से मिलके नहीं आया, होता तो मैं ननिहाल भरत के ननिहाल होते हुए ही निकल जाता, एक बार मैं भरत से मिल लेता, अयोध्या से जंगल में ही तो जाना था तो वो दिशा पकड़ लेता जिस दिशा में भरत का ननिहाल है, वो मेरा ननिहाल भरत का ननिहाल एक ही है, मैं ननिहाल की तरफ जाकर के हूं जाता। क्या करें, वो दिमाग में नहीं आई, क्या करें, भरत तो भरत ही है। और जब ये राम जी प्रयागराज में स्नान करते थे तो यूं भरत खंडे ऐसे बोलने लगते, भरत बोला मंत्र नहीं बोला, हाथ यूं ही रह जाते थे। प्रयागराज में या गंगा जी में तीर्थ में स्नान करते हैं ना तो पहले तीन डुबकी लगाते हैं, तीन डुबकी लगा करके फिर लेकर सूर्य भगवान की तरफ यूं बारह बार यूं जल देते हैं, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, बारह बार सूर्याय नमः करते हैं और फिर नाड़े का मंत्र बोलते हैं कि अमुक गोत्र से उत्पन्न मैं इस भरत खंड के अंदर विराजमान इस तीर्थ में मैं स्नान करता हूं। तो जब भरत खंड नाम आता तो मगन होय तुमरे अनुरागा, ये नाम देश का नाम भरत खंड है, वो तुम्हारा नाम सुनकर के डूब जाते थे प्रेम में। तुम तो अपने मन में जाने क्या सोचते हो। और राम जी है, राम जी इतने प्रेम में डूबे रहते हैं क्या बताएं, राम जी के लिए भी कोई बड़ाई की बात नहीं, वो तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वो तो अपने शरण में आए हुए की पूरी रक्षा करने वाले हैं। तुम तो कहते हो कि हमारे लिए कलंक है, हम कहते हैं कि हमको ये उपदेश मिल गया, ये ऐसा उपदेश मिला है कि राम जी की भक्ति कैसी होनी चाहिए उसका उपदेश मिल गया। नवविद विमल तात जस तोरा, तुम्हारा तो यश कैसा है, नया नया चंद्रमा होता है, बढ़ता ही जाता है, अब आजकल चंद्रमा बढ़ता ही है, ऐसे तुम्हारा ये यश है। जो भगवान के भक्त रूपी कुमुद और चकोरों को सुख देने वाला है, चकवा है, चकोर है, कुमुद है, कमलनी है, उनको ये सुख देने वाला है। परंतु ये चंद्रमा तो उदित होता है, अस्त होता है, घटता है और बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा हरदम बढ़ता ही रहे, कभी अस्ताचल की ओर जावे ही नहीं, घटे ही न, जगन्नाथ दिन दिन दूना, कोक तिलोक प्रीति अति कर रही। ये जो चकवे वगैरह है वो इस चंद्रमा से प्रेम नहीं करते, परंतु कोक तिलोक प्रीति अति कर रही, त्रिलोकी रूपी जो चकवा है वो तुमसे प्रेम करेगा, और राम रूपी सूर्य का जो तेज है वो तेज तुम्हारे तेज को हर नहीं सकेगा। ये तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, केकई रूपी राहु इसको कभी नहीं लगेगा, ग्रसई न केकई कर्तव्य राहु, केकई का जो कर्तव्य है वो राहु बनकर इस चंद्रमा को खा नहीं सकता है, और राम जी का प्रेम है वो इस चंद्रमा का अमृत है। और इस चंद्रमा के द्वारा गलती हुई थी चंद्रमा की, तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा है, भागवत में आता है पर उसको ज्यादा बोलते नहीं है, भागवत वाले भी कथा करने वाले भी उस दोष को बताते नहीं है, क्योंकि बड़े आदमियों की कोई गलती होती है वो होती तो है सुधार के लिए, लोग उसमें देखते, अरे इतने बड़े आदमी ने गलती कर दी। अरे वो गलती अध्यापक लिखता है कि 5 को 4 से गुणा करना है, 5 गुणा 4 बराबर 19 बराबर 20 बराबर 21 और बराबर 22। अब लड़कों से पूछता है कि बेटा बताओ इन चारों में से सही कौन सा है, तो वो अध्यापक जो 5×4=19 लिखता है तो अपनी अज्ञानता से थोड़ी लिखता है, वो बालक के ज्ञान अज्ञान को पहचानने के लिए लिखता है। अर्थात बालक को ये बताना चाहता है कि 5×4=20 होते हैं बेटा, 19 नहीं होते, 21 नहीं होते, 22 नहीं होते, 20 ही होते हैं। ये बताने के लिए 3-4 गलत और रख दिए वहां कि बालक कितना समझता है। ऐसे ही बड़े पुरुषों के द्वारा कोई गलती आती है तो वो गलती वास्तव में उनकी भूल के कारण से नहीं है, वो हम लोगों को समझाने के लिए है। तो कहते चंद्रमा ने जो गुरु का अपमान किया, गुरु के साथ कोई अपराध किया था, वो दोष तो इस चंद्रमा में है लेकिन तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा में वो भी नहीं है। और देखो भरत, ये भगीरथ हुआ था जिसने गंगा जी को यहां लाकर के संसार का कितना बड़ा काम किया, उसी कुल के अंदर दशरथ जी हुए हैं, इनका कोई वर्णन कर नहीं सकते, गुण इतने हैं। अरे जिनके यहां राम प्रकट हुए, तुम भाई प्रकट हुए, उनकी महिमा को कौन कह सकता है। तो भगीरथ ने तो गंगा को प्रकट किया, दशरथ जी ने राम को प्रकट किया और तुमने राम की कीर्ति को प्रकट किया, तो तुम भगीरथ से भी बढ़कर निकले। कीर्ति विद तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। और इस चंद्रमा के अंदर कुछ कालापन दिखता है, वो मृग की आकृति, तुम्हारे में तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है उसमें राम का जो ध्यान होता है ना, वो मृग का चिन्ह है। देखो तुम कोई किसी प्रकार की ग्लानी मत करो। हम देखो देखो न तो हमें राम जी से कोई मतलब है और न हमें तुमसे कोई मतलब है, हम क्यों किसी को झूठी प्रशंसा करें। हम तो जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, कोई तुम्हारी प्रशंसा करने से तुम हमको कुछ दे दोगे वो हमको आशा नहीं है, और राम जी हमको दे देंगे वो भी आशा नहीं है। सब साधन कर सुफल सुहावा, हम इतनी बात कहते हैं और सत्य सत्य कहते हैं कि हमने जीवन में जो कुछ साधन भजन किया उसके फल से हमको सीताराम जी के दर्शन हो गए, और सीताराम जी के दर्शनों का फल है कि आज तुम्हारा दर्शन हो गया। ऐसी सुनते ही सब लोगों की प्रेम समाधि लग गई, सब जय हो करने लग गए, सब लोग आनंद के अंदर डूब गए। सब लोग जो है वहां पर बैठे हुए धन्य 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 कहने लगे, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, धुनि सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। भरत जी महाराज बड़े प्रेम के अंदर वहां डूब गए। अब भरत जी महाराज को इस प्रेम के अंदर डूबे रहने दो, अब आगे की बात कल कही जाएगी। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम
सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम,
राम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
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 जय सीताराम सीताराम। राम सीता राम जय सीता राम
सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।